तो होता है ना, इस वक्त सिर्फ वही लोग निकलते हैं जिनके लिए आसानी हो चुकी हो। एक दफा निकलने की आदत हो जाए, इसके बगैर बंदा रह नहीं सकता। जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि मुश्किल है आसानी है, लेकिन जिंदगी इसी में ही है, ऐसे ही है। तो हमारा ये ट्रिप चल रहा है, काफ़ी हेक्टिक भी है, लेकिन मैं इसको हमेशा ब्लेसिंग कहती हूँ, क्योंकि ये वो दौर चल रहा है जो मुझे लगता है आगे अल्लाह को पता है कितनी जल्दी ये वक्त चेंज होगा। हम आखिरी जनरेशन है जो ऑन साइट पे मिल रहे हैं। इंसान इंसान के टच के साथ हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं, हमें फीलिंग आती है ना, ये मे भी लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट जनरेशन है। अगली नस्लें जो हमारे बच्चों के बच्चे और आगे उनके बच्चे होंगे ना, वो मिसालें दिया करेंगे कि मेरे दादा अबू के दौर में इतने लोग इकट्ठे घर में होते थे, ऐसे थे वो। आपने 2-3 साल पहले कोरोना के सीज़न में इसको एक्सपीरियंस कर लिया, जूम पे शादियां तक हुई ना, हज नहीं हो सका, या हुआ भी मतलब हर एक्टिविटी बंद हो गई थी ना। उसकी वजह क्या है कि आने वाली दुनिया तन्हाई की दुनिया है। आप और मैं आज से पीछे ज़रा सा बैक पे जाइए, आपके बाप दादा ससुर वो जो स्टोरी सुनाते हैं हमें, उसको देखकर हैरत नहीं होती? पहली छुट्टी पे नानी के घर जाते थे लोग, खाला के घर। हमारे वालिद कहा करते थे कि पहली छुट्टी पे हमारी खाला टांगा लेके आई होती थी, और हमारे लिए छुट्टी का मतलब था खाला का घर। नानी नहीं होगी, नानी होती तो फिर खाला के बच्चों ने भी नानी के घर जाना था। 3-3 महीने जाकर रहते थे, और आखिरी दिन भी रोते हुए ही आते थे कि नहीं जाना। आज की खाला पे अल्लाह रहम करते, जिधर बहन अपने एक दो नहीं 5-6 बच्चे के एवरेज थे। यानी इससे पिछली जनरेशन को देखें तो उस वक़्त लोग इंसानों के ज़्यादा करीब थे, तकल्लुफात कम थे, कह लीजिए मोहब्बतों की मिठास थी। कोई किसी ने जाकर किसी के घर ये नहीं देखना होता था कि क्या खिलाया क्या पिलाया। आज तो यकीन करें सफ़ेद पोशी का भरम रह जाए, एक हफ्ता भी कोई मेहमान आकर, बैक होम की बात कर रही हूँ हम जो बाहर के मुल्कों में, यहाँ ना तो कोई इतना आता है, इसीलिए हमें फील भी नहीं शायद होता होगा, और ना कोई इतना जाता है, लेकिन मुश्किल हो गया है। हकीकत है कि इस वक्त 2-3 दिन भी किसी के साथ रहना, और आने वाले को भी शर्म आती है और जाने वाले को भी शर्म आती है। वजह क्या है कि हम इंसानों से दूर, और मादा ये मटीरियलिज्म है। इस वक्त आप देखें, मुझे हमेशा इसलिए इतनी लाइटें अच्छी नहीं लगती हैं, अभी भी थोड़ी कम करें, ये भी कर दे, नॉर्मल रहिए, बहुत आंखें खोल के देखना, बहुत पढ़ना, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मस्नूई रोशनियों में रहते हैं ना, तो मादे की मोहब्बत इंसान को सख्त दिल बना देती है। डायमंड ही क्यों ना हो, है पत्थर, हमने उसको डायमंड कह दिया वो और बात है, लेकिन वो है पत्थर। एक बल्ब पे 6 लाइट्स चलती हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगियों में काफ़ी चीज़ें मसाइल का शिकार हुई हैं। चलते हैं अपने मौजू पे, और अल्लाह ताला करे कि हम इसका हक अदा करें। मैं शुरू करूँगी अब, नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर, युमिनून बिल गैब, ईमान बिल गैब, अनसीन वर्ड पे बिलीफ रखना। ये हमारी एक मेन सीरीज चल रही है, मैं आप सब सिस्टर्स को भी बता रही हूँ कि हमारा आज का एक लेक्चर एक कंप्लीट लेक्चर होगा, लेकिन एक पार्ट ऑफ द सीरीज है। आजकल हम कुरान पाक की बिल्कुल पहली ही नसीहत, जालिकल किताब ला रईब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिससे हिदायत मिलती है मुत्तकियों को। और मुत्तकी कौन होते हैं? जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब गैब पर ईमान लाना ये क्या हकीकत है, इसके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई? ईमान बिल गैब के अंदर जो पहली चीज़, युमेनून बिल गैब, जिसको देखकर एक इंसान वाकई हकीकत में सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमारा मालिक जिसने इतनी प्यारी दुनिया बगैर किसी मशवरे के, किसी की ज़रूरत के बनाई, अब वो चला भी रहा है। तो आज का लेक्चर इसी युमेनून बिल गैब में से ईमान बिल मलाइका का लेक्चर है, फरिश्तों पर ईमान। और मैं आप सबको बताऊं कि अभी तक इस सीरीज में 7-8 लेक्चर हो चुके हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं। आज का जो लेक्चर है वो तो पूरा आप ही सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिल चाहेगा ना आज की बात सुनकर, तो फिर आपको मैं बता दूंगी कि नूरुल कुरान टीवी, वेरी सिंपल एक ही लफ्ज़ है, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी कोई हैशटैग जो भी होते हैं ना, और नूर के लफ्ज़ में यू डालें, नूरुल कुरान, NURULQURAN TV, खाली नूरुल कुरान डालेंगे तो यूट्यूब पे आपको चैनल दिखेगा, आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 5000+ वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स उसमें छोटे बड़े मौजूद हैं, तो उसमें ये मिल जाएगा आपको। कहाँ ढूंढे, दो जगह, या तो सऊदीया ट्रिप 2024 इसमें भी होगा, और इसी तरह यूमिनूना बिलगैब सीरीज में भी होगा। फरिश्ते क्या हैं, बहुत कम हम जानते हैं इसके बारे में। जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था वहाँ से, तो साथ ही हैरान थे कि कितना कम जानते हैं हम फरिश्तों के बारे में। मैं आपसे अगर पूछूं कि आप फरिश्तों के बारे में क्या जानते हैं, तो हमें बहुत कुछ पता भी है, लेकिन जो मुझे खुद इस सीरीज की तैयारी के दौरान बात महसूस हुई, कुरान पाक की बहुत सारी आयतें, अब मेजर पार्ट ऑफ द कुरानिक आयात जो है वो फरिश्तों के बारे में नाजिल हुआ है, यानी फरिश्ते कौन, फरिश्ते क्या करते। और इसी का मैंने एक शॉर्ट वर्जन आने से पिछले माह पहले जर्मनी में एक पूरी वर्कशॉप दी, 3 डेज की थी, तो उसमें भी हमने देखा खुलासा, वो आप सब वहाँ ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा कि फरिश्ते कौन हैं, उन पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, कब पैदा किए गए, किस चीज़ से पैदा किए गए, क्या हम फरिश्तों को देख सकते हैं, फिर वो खूबसूरत होते हैं कि नहीं, मुजक्कर है कि मुअन्नस है, मेल और फीमेल, क्या फरिश्ते शादी करते हैं कि नहीं, फरिश्तों की औलाद है कि नहीं, खाते हैं पीते हैं थकते हैं नहीं, ये पूरी बातें डे वन में हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने इसमें एक टॉपिक किया था कि फरिश्तों की क्या अथॉरिटी, क्या है डोमेन, क्या है अता करदा कुदरत कितनी और उनके इख्तियारात कितने हैं। फिर हमने इसमें एक टॉपिक किया था कि फरिश्तों की आदात क्या होती हैं, सिफात क्या है, अखलाक क्या है। फरिश्तों की जो हमने 8 चीज़ें पढ़ी थी, उसको देखकर तो लगता है कि इंसान अगर सिर्फ फरिश्तों वाली आदात भी रख ले तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, खूबसूरत हो। फिर हमने एक टॉपिक इसमें किया था फरिश्तों का पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है उनका ना, और फिर इसका एक लेक्चर बहुत यूनिक, मशहूर फरिश्ते और उनकी जिम्मेदारियाँ, कैसे हम कह सकते हैं कि हमें इतना पता है, हमारे पास इतना वक्त ज़िंदगी में होता है, हम ज़ाया कर देते हैं बेकार चीज़ों में, वॉन्डर ब्लाइंडली, नेट पे क्या है, नेटफ्लिक्स पे क्या है, और इसी तरह से आपको पता ही है जहाँ जहाँ हम जाते हैं सोशल मीडिया पे, पहले तो लोग बाज़ारों में जाकर शॉपिंग करते थे, अब नेट पे ढूंढते रहते हैं क्या मिल रहा है। ज़िंदगी इज़ टू शॉर्ट, किसी ने मुझसे कुछ बातें पूछी, ये वो ये उसकी बातें समझ ही नहीं आती, लोग ऐसे बेकार बातें में वक्त करते हैं, तो मुझे कहेंगे आपकी क्या राय है, तो मैंने लिखा लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू डिस्कस पीपल, खुदा हाफिज। मेरे पास ना इतना दिमाग है, ना वक्त है, ना एनर्जी है कि मैं लोगों को डिस्कस करूँ, एक स्पीकर ये कहता, वो ये कहता, ये है वो है, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू, में सारे बंदे हैं। कुरान पकड़ लो, अल्लाह की किताब वो क्राइटीरियन है जो आपके दिल दिमाग को खोल के रख देती है, और जितना ज़्यादा आप कुरान से डूबे हुए, मैं आप सबको भी कहूँगी, एक तो सऊदी अरब में आप रह रहे हैं माशाल्लाह, अबाए पहने हुए हैं और बड़ी मोहब्बत है आपके चेहरों पे, और जब हम बाहर के लोग, बाहर से मुराद आउट ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब में दाखिल होते हैं ना, तो हमें लगता है हम जन्नत में आ गए, ये नेक लोगों की बस्ती है, ये खुशबख्त तरीन लोग हैं ज़मीन में इस वक्त, अगर मुसलमानों के अतबार से देखा जाए तो दी बेस्ट एरिया है ना। तो आप सबको मैं ये बात कहूँगी, आप कभी भी किसी दूसरे की नज़रों से खुद को ना देखें, आलिम फाजिल फलां कौन, फलां के साथ क्या लकब, क्या उसके इंट्रो, क्या नहीं, एक चीज़ क्राइटेरियन बना ले, और वो क्या है, कुरान कितना आता है। अभी सादा कुरान आपके सामने खोल दिया जाए, कितने, अब ये मैं आपसे नहीं पूछने का आग्रह रखती क्योंकि मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, अगर किसी की हूँ तो फिर बिस्मिल्लाह, जब सादा कुरान पढ़ा जाता है मुझे कितना समझ आता है, जब तिलावत हो रही होती है तो मुझे कितना समझ आता है, हरम में तरावियां सुनती हूँ तो किससे समझ आता है, कुरा जाते हुए मुझे कुरान की एक आयत बता देता है तो मुझे कितना समझ आता है, हर रोज मगरिब ईशा और फजर में इमाम साहब कुरान पाक का जो हिस्सा पढ़ते हैं मुझे वो कितना समझ आता है। बस अगर आपको समझ आता है ना अपनी जुबान में, वो उर्दू हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, वो नॉर्वेजियन तो यहाँ होगी नहीं मुझे पता है, डच भी नहीं होगी, फ्रेंच भी नहीं होगी, इसलिए मेरे लिए इजी है, या उर्दू या इंग्लिश या अरबिक। अगर सिस्टर्स आपको अपनी किसी भी जुबान में कुरान समझ नहीं आता, लीव एवरीथिंग, आज इल्म का भी एक गलगला है। हम इल्म के नाम पे जो कुछ भी सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ी नेमत है। लेकिन जो असल इल्म, वो चीज़ जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल तक इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ी, वो क्या थी? वो इल्म था तज़किया, तरबिया। अपने आप को छोटा समझो, अपने आप को बड़ा ना समझो। आज के दौर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हर चीज़ एक्सपोजर पे आ गई। मैं आपको मिसाल देती हूँ, और ये फ़ायदे की खातिर मौजू तो आपको सुना ही दूंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने आपके लिए जितना नसीब में रखा है। पहले लोग एक मस्जिद में जाते थे, एक मदरसे में जाते थे, दरासात में जाते थे और नॉलेज लेते थे। उनके सामने उनका एक उस्ताद होता था जो मेन टीचर होता था, साइड पे दूसरे टीचर होते थे। अब एक बच्चा जैसे पैदा हुआ, बड़ा हुआ ना, तो अपने माँ बाप को देखता है। उसके लिए माँ बाप हीरो होते, पहले होते थे, अब नहीं होते। माफ़ कीजिएगा, आज के माँ बाप बड़े फितनों में हैं। आजमाइश है, क्योंकि बच्चों के पास एक लंबी लिस्ट है कंपेयर करने के लिए कि आप ऐसे हैं, फलां ऐसे। आज आप अपने बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में ये नहीं कह सकते कि बेटा मामा ज़्यादा प्यार करती हैं कि बाबा करते हैं, जो बचपन से माँ बाप का एक तसव्वुर था। आज के बच्चे को अगर आप दुनिया में मुख्तलिफ लोगों के सामने पेश करें ना, तो आप बताइए कि बच्चा अपने माँ बाप को ज़्यादा पसंद करता है कि दूसरों के माँ बाप को? दूसरों के माँ बाप को, यस। और वो भी वो बच्चे जो माशाल्लाह कद में आपसे बराबर हो जाते हैं। नहीं, आपके माँ बाप ऐसे, वो फलां ऐसे, फलां ऐसे। ठीक है, चलिए। अपने उस्ताद से लोग एक ऐसे ही माहौल में बैठ के पढ़ते थे, उनको लगता था दुनिया का सबसे अच्छा इंसान ये है, इल्म वाला भी यही है जो सिखा रहा है, पूरा यकीन रख कर उससे सीखते थे। हाँ, सीखने से पहले ये फ़र्ज़ था कि बेहतरीन को चूज़ करें माँ बाप, बच्चा तो नहीं चूज़ करता ना। और जब सच्ची बात है कि आप पीछे चले जाइए, आज से कोई 1000 साल पीछे चले जाएं, तो कुरान सुन्नत ही था। कौल अल्लाह व कौल रसूल, सलफ सालेहीन, आइमे कराम, मुहद्दिसीन, जिनसे पीछे दीन नबी सल्लम से जिन तक गया वहां था। आज का फितना क्या है, एक बच्चे को भी यूट्यूब पे एक वीडियो बनाकर उतना ही एक्सपोजर मिल जाता है जितना एक बूढ़े को। एक आलिम, एक स्कॉलर, एक मोटिवेशनल स्कॉलर है, कहता है खुद को या कोई है, और दूसरा जो है वो एक आलिम है। कोई एक फिक को फॉलो करता है, कोई दूसरी को करता है, कोई एक मसलक को मानता है, कोई दूसरी। देखिए ना, जब फोन मेरे हाथ में है तो आपके भी तो है ना, और अगर मुझे हक है या मेरे साथी इस पे कोई ये मेरा लेक्चर अपलोड कर देंगे, तो क्या दूसरों के नहीं करेंगे? आज की नस्ल कंफ्यूज है इस सो मच, और उस बैंड पे क्या है, आई डोंट नो व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। मैं आप सबको आज के इल्म के फितनों में, इस वक्त इल्म के फितने पे बात नहीं करने आई, लेकिन आज आलमे दीन हर आलिम खुद पसंदी का शिकार, वो छोटा आलिम है, वो बड़ा आलिम है, वो उससे बड़ा आलिम है, और वो क्या है, जो मैं हूँ वो कोई नहीं। और एनर्जीज किस पे लग रही हैं? दूसरों को डिस्करेज करने में और अपने आप को करेज करने में। तो याद रखिए, नफ्स की खुफिया बीमारियों में से एक बीमारी है। मैं सबसे ठीक हूँ, कल मैंने एक जुमला बोला, वहाँ बहुत प्यारा माहौल था। कल रात को भी एक लेक्चर जो हुआ है, तो किसी ने सवाल भी पूछा कि आपका इससे क्या मुराद है, लोग मुख्तलिफ होते हैं, गलत नहीं होते, ये असूल ज़िंदगी में बनाइए। आप सब यहाँ बैठे, अभी बाद में पूछेंगे, किसी को सर्दी लगी होगी, किसी को गर्मी लग रही होगी, किसी को मेरी आवाज़ सही पहुँच रही है, किसी को आई नहीं रही, कितने शिकवे करेंगे लोग बाद में घर वालों से। क्यों? क्योंकि कोई एसी के सामने बैठा हुआ है, कोई दूर बैठा हुआ है, किसी ने अबाया भी पहना है मोटे कपड़ों में, जिन कपड़ों में बाहर है उसी में आके बैठ गया है, किसी ने कपड़े उतारे हुए हैं अबाए मोटे वाले, फर्क है ना, कोई स्पीकर के पास है, कोई दूर है, तो क्या हुआ, सब के हालात को देखिए। तो लिहाजा आपका वक्त, अगर कुरान को सुनकर आप समझने के काबिल, तजवीद ठीक हो रही है, हराम गलतियां निकल गई हैं, हा ख्वा हा का फर्क पता चल गया, दौ दाल फर्क लग गया, लेट्स मूव ऑन। कुरान का कुछ हिस्सा हिफ्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे को सीने में डालिए। मैं लोगों से देख रही होती हूँ ना, जब वो इंट्रोडक्शंस करा रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ लोगों को इंट्रोडक्शन कराना है तो लफ्ज़ नूरुल कुरान का इंट्रोडक्शन करा दो। कुरान का नूर दिलों में, जब बितने फितने आएंगे ना, अल्लाह के नबी ने कहा कुरान को पकड़ लो, तरक तो फी को ममरइन लन तदिल्लु मा तमस्सक तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नति रसूलिही। मैं तुम्हारे बीच में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम नहीं भटकोगे जब तक तुम इनको कुचलियों से पकड़े रहोगे, और वो अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत है। आपको कुरान तो पता ही कुछ नहीं, तो आप क्या बने फिरते हैं आलिम फाजिल। गलत आयतें पढ़ती मैंने देखा लोगों को, चार लफ्ज़ पूछ ले, कहते नहीं ये तो मुझे नहीं पता। हाँ मैं डिबेट कर सकती हूँ आपसे इस मौजू पर, हम आपके साथ ये बहस छेड़ सकते हैं, ज़रा हमें फिक की रोशनी में इसका जवाब दे दें। सब जहनी आवारगी है। अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को ना एक फुरकान देता है। कुरान जो है ना आपके सीने पे जब नाजिल होता है ना, तो उधर से रहमत के चश्मे फूटते हैं, तो अपने लिए और आप माशाल्लाह होंगी। आप सब के बारे में मेरा यकीन तो नहीं कह सकती, लेकिन गुमान है कि आप सब में से अक्सर कुरान के लफ्ज़ बलफ़ तर्जमे से गुजर चुकी होंगी, आपको समझ आता है। अपनी बच्चों को, बच्चों के बच्चों को भी इसी पे डालिए। 10 साल की उम्र, मैंने अक्सर लोगों को ये गोल दिया है, बच्चे की 10th बर्थडे है ना, और दुनिया कहती है या आप कहते हैं गिफ्ट चाहिए ना बच्चे को, उस दिन उसको सूरह फातिहा का गिफ्ट दे दो। और मेरा बेटा मैं आपको सिखाऊंगी, अल्हम्दु सारी तारीफें ली वास्ते अल्लाह अल्लाह रब है अलालमीन। मैं बेटा आपको इसका लफ्जी तर्जमा सिखाया करूंगी रोज। 15 साल का जब होगा, 5 साल मोर देन एनफ है। किसी दिन आप 3 आयतें कर लेंगे, किसी दिन 2 कर लें, कभी 1 कर लें, आगे जाकर 1-1 रुकू करेंगे। 5 साल में आपका बच्चा फातिहा से नाश्ते कुरान पढ़ लेगा। पहला काम ये कीजिए, आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, दुनिया खराब कर रही है, यूट्यूब पे ये आ गया, नेटफ्लिक्स पे ये आ गया, किटकैट ये छोड़ दीजिए, ये पहले भी था अब बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारी अप्रोच में आ गया। आज इंटरनेट ने और फोन के इस्तेमाल ने हर चीज हमारे हाथों में दे दी है, तो अपने बच्चों पे मेहनत कीजिए इस चीज़ में कि उनको पहले एक दफ़ा कुरान सिखा, हाँ सिखा दिया, आपने भी सीख लिया, उसके बाद फिर आप जो चाहे करें, दुनिया के बाजार में डाल दें, कुरान उनको वापस ले आएगा, भटकेंगे नहीं। तो ये थी चंद बातें जो मेरे दिल से निकली, खुद ही निकली, बगैर इरादे के निकली। बात करते हैं फरिश्तों पे, हमने इसमें एक टॉपिक देखा था फरिश्तों के इंसानों के साथ ताल्लुकात की क्या नौइयत है। उस दिन साथी हैरान हो गए थे कि इंसान की तखलीक अभी मदर वूम में बच्चा कंसीव हुआ हुआ है, 40 40 दिन का जो फर्क के साथ हिसाब आता है, उस दिन से फरिश्ते का इंसान के साथ ताल्लुक था, और जब रूह निकल रही होती है उस वक्त तक फरिश्ता साथ होता है। फिर फरिश्तों के अंबिया और रसूल के साथ क्या ताल्लुकात थे? अब तो खत्म हो गया ना वो सिलसिला। आज आपके लिए फरिश्तों के अहले ईमान के साथ ताल्लुकात का टॉपिक है, यानी आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो क्या है, फरिश्तों के अहले ईमान से ताल्लुकात कैसे हैं। इसमें नंबर एक, आप अभी रहिए, अहले ईमान से मोहब्बत करते हैं। इसके पहले पार्ट को मैंने 2 3 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह खुबर में एक रेस्टोरेंट में हमारा लेक्चर हुआ था उसमें किए। फरिश्तों के अहले ईमान से ताल्लुकात में पहला ताल्लुक है कि अहले ईमान से वो मोहब्बत करते हैं, लिखे आप भी बल्कि, फरिश्ते इंसानों से मोहब्बत करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको पढ़ने सुनने के बाद वाकई दिल करता है कि फिर हम भी इन फरिश्तों से मोहब्बत करें। दूसरा, फरिश्तों का ईमान वालों के साथ ताल्लुक़ क्या है कि वो ईमान वालों के लिए दुआएं करते हैं, बड़ा इमोशनल पार्ट है वो भी। इस पे एक अलग टॉपिक भी है, हामिलीन अर्श की दुआएं ईमान वालों के लिए। इसी तरह एक और लेक्चर है, कभी अमेरिका में हुआ था, अर्शियों की दुआएं फर्शियों के लिए। कुरान पाक की वो आयतें सारी इकट्ठी की गई हैं उसमें, जिसमें फरिश्तों का मोमिनों के लिए दुआएं करने का टॉपिक आता है, दुआएं लीजिए। फिर हमने इसमें देखा था कि फरिश्तों की दुआएं किन खुश नसीब लोगों को मिलती हैं, नोट करिए। नंबर एक, खैर और भलाई का सबक देने वालों के लिए, जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको फरिश्तों की दुआएं दिलाते हैं। इस वक्त अगर आप में से कोई भी सिलसिले का हिस्सा है ना, तो खुश हो जाए। आपने हदीस सुनी हुई, मैंने उस लेक्चर में सुनाई है, समंदरों की मछलियाँ और फरिश्ते और परिंदे, खैर और भलाई का सबक देने वालों को। नंबर दो, नमाज बा जमात का इंतज़ार करने वालों को, मस्जिद में जाकर पहले से बैठ जाते कि हम नमाज पढ़ेंगे, और उतनी देर फरिश्ते उनके लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह इस बंदे को बख्श दे। फिर इसी तरह तीसरी कैटेगरी इसमें हमने पढ़ी है, नमाज़ पढ़कर मुसल्ले पे बैठे रहने वालों के लिए। आजकल जल्दी जल्दी नमाजों के टाइम हो रहे हैं ना, तो मगरिब की नमाज़ के बाद वहीं बैठे रहा करें, जो काम करना है साथ ही रख के बैठ गए और आप उसमें कुछ भी करते रहे। जितनी देर आप जाए नमाज पे बैठे रहेंगे, फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहेंगे। फिर चौथी कैटेगरी उसमें थी कि अगली सफ़ों में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, और पांचवी क्या थी कि दाईं जानेब नमाज़ पढ़ने वाले, यानी सफ की राइट साइड पे जो लोग खड़े हो जाते हैं उनके लिए। फिर छठी कैटेगरी थी सफ़ों में मिलकर खड़े होने वालों के लिए, यानी गैप्स को फिलअप करने वालों के लिए। और नेक्स्ट नबी सल्लम पर दुरूद पढ़ने वाले, आप भी पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, 1 सेकंड लगेगा दिल में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की हमें दुआएं दिलाई होंगी। फिर अगली चीज़ रोज़ा रखने वालों के लिए सहरी खाने वाले, जो सहरी में उठते हैं रोज़ा रखने के लिए। और नेक्स्ट था मरीजों की इयादत करने के लिए, किसी बीमार की इयादत कीजिए अल्लाह ताला आसानियाँ देगा। चौथा ताल्लुक क्या था, गाइड करते हैं आपके बच्चों को, फरिश्ते नहीं भटकने देंगे, शर्त यह है कि आप उनके दिलों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डाल दें। फिर फरिश्ते दुआओं पे आमीन भी कहते हैं। फिर जो जुमे की नमाज के लिए आते हैं तो फरिश्ते उनके इंदराज करते हैं, साइन इन साइन आउट बाय सिस्टर्स कर रही हैं ना, जुमा के लिए जो ब्रदर्स जाते हैं ना उनका साइन इन साइन आउट फरिश्ते करते हैं। अपने मर्दों को बताइएगा। आज जिस मौजू से हम अपने इस लेक्चर को शुरू करें, ये पार्ट 2 लेक्चर है इस मौजू का कि फरिश्तों का ईमान वालों के साथ क्या ताल्लुक होता है, तो वो क्या है कि इल्म और जिक्र के हलकों में हाजिर होते हैं फरिश्ते। मेरा ईमान है अल्लाह ताला के हुक्म से कि इस वक्त भी यहाँ फरिश्ते हैं। माशाल्लाह आप लोगों से जगह तो भरी हुई है, फिर भी जो कोई जगह बीच में रहेगी अल्लाह ताला उस जगह को खाली नहीं छोड़ते और उन जगहों को फरिश्त के साथ अल्लाह ताला भर लेते हैं। ये अल्लाह सुबहाना ताला की शान है कि उसने इंसानों को इल्म के लिए आने का मौका दिया। रूह ज़मीन पे जहाँ कहीं भी तालीम, ताल्लुम, वास, नसीहत, जिक्र, अजकार की कोई महफिल सजती है ना, वहाँ फरिश्ते भी शरीक होते हैं। और ऐसी मजलिसों पर अल्लाह सुबहाना ताला फरिश्तों को भेजते हैं। हमने अपने उस्तादों से, और अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे जो अब दुनिया में नहीं है, और जो हमारे उस्ताद कराम जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको आफ़ियत दे और तौफीक दे कि इल्म को फैलाएं और इल्म सीखे सिखाएं। एक हदीस जो आप, मेरा गुमान है कि आप में से हर सिस्टर ने पढ़ी नहीं है, खुद तो सुनी ज़रूर होगी, और वो हदीस कहाँ है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न लिल्लाहि मलाइकतन यतूफून फित्तुरुक यल्तमिसून अहल ज़िक्री फ़इज़ा वजदू कौमन यस्कुरून अल्लाह तनादौ हलुम्मु इला हाजतिकुम काला फ़यखुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इला समाई दुनिया काला फ़यस्अलहुम रब्बुहुम वहुवा अलमु मिन्हुम मा यकूलु इबादी पालू यकूलू न युसब्बिहू न का व युकब्बिरू न का व यहमदू न का। ये बुखारी की रिवायत है 6408, तवील हदीस है। आइए ज़रा इसका तर्जमा सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों में फिरते रहते हैं, इनका नाम क्या पड़ा, साइहून, घूमते फिरते रहते हैं, और अल्लाह की याद करने वालों को तलाश करते रहते हैं। फिर जहाँ वो कुछ ऐसे लोगों को पा लेते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते होते हैं, तो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, क्या कहते हैं, आओ हमारा मतलब हासिल हो गया, यानी जिस काम पे अल्लाह ने हमें रखा था हमें वो काम मिल गया। और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर वो आसमाने दुनिया तक अपने परों से उन पर उमड़ते रहते हैं, फिर आखिर में अपने रब की तरफ चले जाते हैं। फिर इनका रब इनसे पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों के मुतल्लिक खूब जानता है, यानी अल्लाह को किसी से पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं, ये मेरे बंदे यहाँ क्या कर रहे थे, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला वो आपकी तस्बीह और तहमीद कर रहे थे, यानी आपकी तारीफें कर रहे थे। तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या उन्होंने मुझे देखा है? कल देखा तो नहीं है। कहते हैं अगर देख लेते तो क्या करते? फरमाया वो देख लेते तो फिर तो वो तेरी और भी हम्द बयान करते। सोचिए ज़रा, किसी को देखा ना हो और उसके साथ इंसान का इतना ताल्लुक हो, और जब वो उसके सामने हो उसको देख ले। मसलन ऐसे ही बेजान चीज़ों में ले लीजिए नियाग्रा फॉल, तस्वीरों में देख लें, तस्करा सुन लें, फिर भी मज़ा आएगा। लेकिन जिस दिन आप नियाग्रा में खड़े उसको देख रहे होते, उस वक्त क्या अल्लाह पे प्यार आता है? तो बिल्कुल वही बात कि जब मुझे वो देख लेंगे तो वो मेरी कैसी तारीफ़ें करेंगे। तो फरमाया अल्लाह फिर तो वो तेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। फिर अल्लाह सुबहाना ताला उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि वो क्या मांग रहे थे? तो कहा वो जन्नत मांग रहे थे। कहा अच्छा, क्या उन्होंने जन्नत देखी है? कहा नहीं। कहते अगर जन्नत देख लेते तो क्या करते? फरमाया अगर जन्नत देख लेते तो फिर तो वो उसकी और तलब करते। कहा अच्छा, और क्या करते हैं? कहा वो जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। कहा वो उन्होंने देखी है? कहा नहीं। देख लेते, कहा फिर तो बहुत कुछ करते। तो अल्लाह ताला फिर उनको क्या कहता है कि जिससे वो पनाह मांग रहे हैं मैंने उनको पनाह दी, जो चीज़ वो तलब कर रहे हैं मैंने उनको दी। आप देखिए कि आज आप बच्चों से ये सवाल करें वो कहेंगे प्रूव इट। ये जो अक्ल है ना, इसका चौकीदार बिठाया हुआ है आज लोगों ने इल्म के नाम पे। अक्ल से पूछो, मौजज़ों का इनकार, हदीसों का इनकार, ये नहीं हो सकता, वो नहीं होता, प्रूफ कीजिए। मुस्तनद अलैह हदीसें जो 1400 साल से चलती आ रही हैं, सलफ सालेहीन की ज़ुबान पे थी, आज फितना इनकार हदीस ने उसको ख़त्म कर दिया आपके सोशल मीडिया पे कॉमन चीज़ों की वजह से। पहले ये चीज़ें बंद कमरों में होती थी, उलमा के बीच में बहसें होती थी, क्या ठीक क्या गलत। आज बच्चा बच्चा बात करता है, नमाज तक नहीं सही, अभी दीन का बुनियादी रंग रूप नहीं है आपके हालो लिए पे, और आप बहसें कर रहे हैं। तो आप लोगों को इन महफिलों की कदर क्या है कि फरिश्ते इन महफिलों को ढूंढ रहे हैं, इल्म की इन महफिलों को ढूंढते रहिए। आज हर चीज़ ऑन साइट पे आ गई कोरोना के बाद, क्लासेस अभी तक नहीं आई, अब और जूम पे चली गई और चली गई। ठीक है, वक्त का तकाजा है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या हमारे घरों से वो इल्म की महफिलें ख़त्म हो जाएं, हमारे मदरसे बंद हो जाएं? नहीं, 21-22 साल हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ताला और भी तौफीक दे दे। 23वां साल है ये साल, हम हर साल नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म से लाइव दौरे कुरान करते हैं। ट्रैवल बहुत थे ज़िंदगी में, अल्लाह ने अमेरिका से शुरू करा के अब पाकिस्तान तक, इस बीच में जितनी पट्टी आती है मुख्तलिफ मुल्कों से दौरे कुरान लिए। वो जो साथी वहाँ बैठकर सुन रहे होते हैं वही अगले पूरे साल का फ्यूल होते हैं, उसी में से अगला पूरा सवीलुल जन्ना निकल आता है, जो हमारा तफसीर कोर्स हर साल एक आता है। मैं सोचती हूँ कि अगर ऑन साइट क्लासेस ख़त्म होती चली गईं तो एक वक्त आएगा कि हमारे घरों में फिर तउस रबाब की आवाज़ें ही होंगी। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम कर दे। अब जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, अल्लाह उन्हें कहता है कि देखो ये मैं कर दूंगा, वो करता हूँ, तो मैं गवाह बना रहा हूँ, मैंने इन सबको बख्श दिया। तो एक फरिश्ता कहता है अल्लाह ताला, उसमें एक ऐसा भी शख्स था जो जिक्र करने वालों में नहीं था, वो तो किसी और ज़रूरत से आ गया था। समझे कि कोई ज़रूरत थी उनकी जिसकी वजह से वो आ गया, कोई जूते देखे क्या हो रहा है मैं आ जाऊँ। हमारी उस्ताद थी, अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको बख्श दे। तो वो कहा करती थी ऐसी कोई बहन थी, चलते चलते बाहर आ गई और कहा अंदर क्या हो रहा है मैं देखूं, फिर अंदर दर्द हो रहा था तो वो भी आके बैठ गई। तो अल्लाह क्या कहता है, ये जाकिरीन वो लोग हैं जिनकी मजलिस में बैठने वाला भी कभी ना मुराद नहीं रहता, मैंने उसको भी बख्श दिया। इस वक्त आप और मैं उस महफिल में बैठे हैं, अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। और ख़ास तौर पे जब आप फरिश्तों के एंगल से इसको देखते हैं तो क्या पता चला कि इल्म की महफिलों में फरिश्ते मौजूद होते हैं। एक और रिवायत लीजिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा इसके रावी हैं, 2699 नंबर हदीस है। व मजतमा कौम मिन बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताबल्लाहि यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस्सकीना वग़शियतहुमुर्रहमा वहफ़तहुमुल्मलाइका वज़क़रहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदहु। अल्लाह के घरों यानी मस्जिदों में से जिस किसी घर में कुछ लोग जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते और एक दूसरे को पढ़ते पढ़ाते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत नाजिल होती है और इन्हें अल्लाह की रहमत ढांप लेती है और फरिश्ते इनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं और इन लोगों का जिक्र इन फरिश्तों के पास करते हैं जो अल्लाह के यहाँ मौजूद हैं। आप चाहते हैं आपका तस्करा वहाँ हो? ये तो हमें इतनी आवाज़ों ने उलझाया हुआ है। पिन ड्रॉप साइलेंस में जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपका क्या हाल होता है? इसको महसूस कीजिए तो क्या पता चला कि फरिश्ते यहाँ मौजूद होते हैं। अपने घरों को चेक कीजिए, हमारे घरों में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो फरिश्तों को आने से रोक दे? आप देखिए कि कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं, गंदगी, जहाँ गंदगी होती है वहाँ फरिश्ते नहीं आते। तो अपने घरों को साफ सुथरा रखना, लहसुन प्याज अदरक और इस तरह की बदबू से अपने घरों को पाक करना कि जिसकी वजह से हमारे घरों में फरिश्ते ना आए, ये बहुत ही बुरी बात होगी। कोई ऐसी गंदी स्मेल, अल्लाह ना करे शराब, सिगरेट, को ड्रग्स, ऐसी जगहों से भी फरिश्ते भाग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या पता चला कि इल्म की महफिलों में आते हैं और कहाँ फरिश्ते आते हैं? तिलावते कुरान के वक्त, जब आप अच्छी आवाज़ से कुरान पाक पढ़ते हैं ना तो फरिश्ते आते हैं। आप भी इधर होता होगा, मुझे लगता है माशाल्लाह सऊदी अरब में तो अभी भी ये कल्चर मौजूद है कि सुबह उठ के लोग ऊंची आवाज़ से तिलावत करते। आपके घरों में किस किस के घर में सुबह तिलावत होती है? कम हाथ है, मुझे पता है कि पीटीवी की नशरियात शुरू होने से पहले जो सुबह की शुरू हुई थी, अक्सर घरों में सुबह कुरान की तिलावत की आवाज़ से सुबह होती थी। जब इंडिया पाकिस्तान में लोग इकट्ठे थे ना, तो हमारे बड़े जो भी वहाँ से मूव हुए वो बताते हैं कि जिस घर से सुबह भजन की आवाज़ें आती थी तो लोग समझ जाते थे ये हिंदू घराना है, क्योंकि उनका धर्म है वो। और जिधर से कुरान की आवाज़ आती थी तो पता चलता था कि ये मुसलमान घर है। हमारी नानियाँ दादियाँ फजर से पहले उठती थी, और सबसे ज़्यादा हमें जिस चीज़ पे गुस्सा या बॉदरिंग होती थी, हमें सबको उठा देते थे। फजर के वक्त सो नहीं सकता था, फिर उनकी आवाज़ें होती थी और कुरान होता था, और फिर वो नानियाँ भी गईं और दादियाँ भी गईं, और हमारे घरों से कुरान की जगह कुछ और आवाज़ें आने लगीं, कभी खबरों के नाम पे, कभी कुछ। कुछ लोग तो टीवी बंद ही नहीं करते, नहीं घर का फर्ज लगता है, घर में रौनक लगती है। सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट देख लेना तो उसके अंदर कितना बैक पे नॉइस होता है।